आहान ओबेरॉय अपने छोटे भाई आयुष ओबेरॉय को पिक करने एयरपोर्ट आया हुआ था। वहां से निकलते हुए जब आयुष ने आहान से उसकी भाई यानी अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढने की बात पूछी तो आहान के जहन में कुछ पुरानी कड़वी यादें ताज़ा हो गई हों। आहान को फिर से गुस्सा आने लगा और उसे काबू करने के लिए वो अपने साइकाइट्रिस्ट के कहे मुताबिक अपने मन में बैक काउंटिंग करने लगा। आयुष ने नोटिस किया आहान उधर उधर देख रहा था और मुठियाँ बंद खुल रही थीं। आयुष समझ गया था कि आहान को गुस्सा आ रहा है। आयुष ने उसे शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिल ब्रो, इसमें इतना परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। एवरीबडी नोज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए अपना सारा डेडिकेशन काम को देना होता है, अब ऐसे ही तो कोई दी आहान ओबेरॉय नहीं बन जाता। आयुष ने बहुत आसानी से बात को टाल दिया। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी, वो जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाना चाहता था। उसने आयुष से कहा, लेट्स गो, तुम्हारे दी आहान ओबेरॉय के पास इतना टाइम नहीं है जो वो एयरपोर्ट पर खड़ा होकर बातों में वेस्ट करे, आई हैव टू रश। हाँ क्यों नहीं, अब दी आहान ओबेरॉय मुझे लेने आया है यही बड़ी बात है, उनका हर एक मिनट कीमती होता है, चलिए सीधे घर चलते हैं, पूरे 5 साल बाद अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से टाइम स्पेंड करूंगा, आयुष ने खुश होकर कहा। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी और दोनों बाहर की तरफ आने लगे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया, स्टार्स और किसी बड़ी हस्ती को कैप्चर करने के लिए मौजूद रहती थी। आहान ओबेरॉय मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और वो भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। सक्सेसफुल होने के साथ साथ वो बहुत हैंडसम भी था, जिसके बारे में लड़कियां स्टार्स से ज्यादा जानने में उत्सुक रहती थीं। आहान को वहां देखकर मीडिया वाले दौड़कर उनके पास आने लगे। आहान ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया और सीधा अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, तो वहीं आयुष वहां खड़े होकर किसी को रॉकस्टार की तरह पोज दे रहा था। उसकी इस हरकत पर आहान और भी इरिटेट हो गया। उसने गुस्से में एक नज़र आयु की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे उसे गाड़ी की तरफ खींच लिया। क्या था वो, आहान ने आयुष को तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। आयुष अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुराकर बोला, कुछ भी तो नहीं, अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मेरे भाई का मैंने जो नाम सुना था वो सच है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के साथ एक स्टार भी बन चुका है। क्या भाई, इतनी अच्छी लाइफ है उसके बावजूद आप इतने सड़े हुए रहते हो, आपकी जगह मैं होता तो अच्छे खासे पोज देकर मीडिया के सवालों का जवाब भी देता। आहान ने आयुष की बात का जवाब देने के बजाय मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, ये मीडिया वाले जितनी जल्दी किसी को अर्श पर पहुंचाते हैं फर्श पर लाने में भी देर नहीं करते, मेरी जो मेंटल कंडीशन है ऐसे भी मुझे मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहना ही सही रहेगा, अगर इन्होंने फिर से कोई वाहियात सवाल पूछ लिया तो गुस्से में उसी वक्त इनकी जान ले लूंगा। फिर दूसरे दिन इन्हीं के चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि आहान ओबेरॉय ने एक रिपोर्टर का कैमरा तोड़कर उसे जान से मार डाला। आहान लाइमलाइट से दूर रहता था, यही वजह से लोगों की क्यूरियोसिटी उसे लेकर ज्यादा थी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उसकी पीआर टीम हैंडल करती थी। वहीं मीडिया के बारे में सोचते हुए आहान पुरानी यादों में खो गया जो लगभग 6 महीने पुरानी थी। आहान किसी बड़ी बिजनेस पार्टी में गया था जहां मीडिया भी मौजूद थी, आते ही हमेशा की तरह मीडिया वालों ने उसे घेर लिया और एक रिपोर्टर ने माइक उसके सामने करके पूछा, सर मैंने सुना था आप शादी करने वाले थे और शादी के दिन ही, रिपोर्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आहान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसका गला पकड़ लिया। वो उसका गला दबाते हुए बोला, बी इन योर लिमिट्स। आहान आगे कुछ कहता या करता उससे पहले उसके मैनेजर ने उसे रोक लिया। लकीली वहां ज्यादा मीडिया पर्सन्स मौजूद नहीं थे और उसे पैसे देकर मैनेजर ने उनका मुंह बंद करवाया था और उनके कैमरा जब्त करके उन्हें एडवांस्ड कैमरा इक्विपमेंट दिलवाए गए। फिर भी उस रिपोर्टर की वजह से आहान की जो इंसल्ट हुई थी उसके बाद वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। पार्टी खत्म होने के बाद आधी रात को वो रिपोर्टर अपने घर को जा रहा था कि तभी तेज स्पीड से चलती आ रही एक गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और फिर उसके नीचे गिरने बाद उसे बेरहमी से कुचल दिया। इसे एक एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन उस गाड़ी को आहान ड्राइव कर रहा था। आहान उस बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जल्दी से आंखें खोली। कुछ ही देर में वो दोनों ओबेरॉय हाउस के आगे थे। ये उसके पापा मिस्टर विजय ओबेरॉय की पुश्तैनी हवेली थी जिसे मॉडर्न लुक दिया गया था। आज भी मुंबई में ओबेरॉय हाउस को ओबेरॉय पैलेस के नाम से जाना जाता था और वो देखने में बहुत रॉयल थी। आगे एक बड़ा सा रनवे बनाकर आगे ग्राउंड बनाया हुआ था ताकि आराम से वहां कोई प्राइवेट जेट लैंड हो सके। दूसरी तरफ एक बड़ा सा लग्जूरियस रॉयल गार्डन बनाया गया। काफी आगे जाने पर एक व्हाइट कलर की पुराने जमाने की हवेली थी जिसे मॉडर्न अवतार देकर और भी खूबसूरत कर दिया गया था। ओबेरॉय पैलेस पहुंचते ही आयुष एक्साइट होकर गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन आहान अभी भी अंदर ही बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आयुष ने झुककर आहान की तरफ देखकर कहा, व्हाट, आपको कोई स्पेशल इनविटेशन देना होगा अंदर आने के लिए? कम आउट ब्रो, आई कांट वेट एनी मोर टू बी विद माई होल फैमिली। आयुष अभी अभी आया था और उसे पुरानी बातें बताकर आहान उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया और कहा,
तुमने रास्ते में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि मुझे यहाँ रुकने का टाइम ही नहीं है। देखो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे जाना होगा। आहान ने मीटिंग का बहाना बनाया तो आयुष को वो सच लगा। उसने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा, ठीक है फिर रात को मिलते हैं और मुझे आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, मुझे एक फैमिली डिनर चाहिए। आहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। आयुष ने आहान को बाय कहा और आहान वहां से चला गया। आयुष गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, और कितना छुपाओगे भाई, जानता हूँ मैं यहाँ नहीं था और मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पीछे से वहाँ क्या हुआ होगा। पता नहीं डैड ने ये डिसीजन क्यों दिया कि मुझे 5 साल के लिए बाहर रहना है और किसी से बात तक नहीं करनी है। मैंने उनकी बात अच्छे से फॉलो की, अपने पीछे से अच्छी चीजें मिस की, उसका गम नहीं है, लेकिन आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब मुझे दुख हो रहा है, मेरी डैड की बात क्यों मानी, कहीं मैंने अपने भाई को उनके हार्ड टाइम में अकेले तो नहीं छोड़ दिया। अब तो मॉम ही सब बता सकती है। आयुष जिस एक्साइटमेंट के साथ ओबेरॉय पैलेस आया था वो अब डिसअपॉइंटमेंट में बदल चुकी थी। वो उतरे हुए चेहरे के साथ अपने लगेज के घसीटते हुए अंदर जा रहा था।